গুরজেন ছিলেন উগ্রসে, আর তার ভাই আর দেবক ইত্যাদি ছিল, ওরা দেখলো যে আমার পুত্রের মতো পুত্র ভাব আছে। তারপরে মৃত্যুর ভোজ পথে এটা পড়বে বলেছে, একবারে সাক্ষাৎ জন মৃত্যু যারা ব্রহ্মজ্ঞানী ইত্যাদি ওই রকম যারা আছে বিরাট
বিরাট।
তারপরে যেরকম দুর্যোধন দেখেছিল যোগীর আলোচনায় ছিল, নারদ ইত্যাদি সব লোক ছিলেন, যার জন্য এই সত্য কি বদন্তি তত্ত্ব বিদস্তত্ত্বম যদি জ্ঞানম অদ্বয়ম ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানেতি সত্যতে। ইনি হচ্ছেন ব্রহ্ম। কোন কোন থেকে উন্নত যোগী ওরা দেখে কি এটি হচ্ছে পরমাত্মা, ওটিকে নারদ প্রভৃতি যে যারা ছিলেন যোগেশ্বর, আরে এই তো ভগবান, এরকম পরতত্ব রূপে সে দর্শন হবে। আর তারপরে মানে রাজাগণ ওরা কি দেখছে সকলকে সাধন, আর
বিষ্ণু নাম
বিষ্ণু নাম
পরদেবতা
বিষ্ণু দেব আর আধ্যাত্মিক, এই বারো রকমের নয় রকমের লোক বারো রকমের দেখলো। পিতার মধ্যে দুটি ভাব বাৎসল্য আছে আর করুণ রস, এই দুটা মিলে গেল। আর আরো দুটা আছে কোথাও, এইরকমের বারো রকমের লোক বারো রকমের কৃষ্ণকে দেখলো নিজে নিজে ভাবনা। এই জন্য যার মধ্যে অনুরাগ আছে কৃষ্ণের মাধুর্য ইত্যাদি, ওই মাধুর্য যত রকমের আছে সব অনুরাগের দ্বারা। আর এটা হলো করণ, না অনুরাগ হলে ভক্তি না হলে কৃষ্ণকে জানাই যাবে না, বুঝতেই পারে না। এখন আমাদের সামনে যদি কৃষ্ণ বাঁশি নিয়ে এখানে উপস্থিত হয়ে যায় না আমাদের ভিতরে, যে আমরা বলবো যে কোন চৌবের ছেলে কি অন্য করা কারো ছেলে টেলে এসে গিয়েছে এরকম হচ্ছে বাঁশুরি বাজাচ্ছে, কিছুতেই আমাদের বিশ্বাস হবে না, কারণ সত্য দেওয়ার আমরা বুঝতে পারবো না। আমাদের কোন অনুভূতি হবে যে এই ভগবান বলে সে ছল করে দিয়ে বলছে, কৃষ্ণ এসে বলবে যে আমি ভগবান, বলছে তুমি কিসে ভগবান বলে তুমি এটা এরকম আর ভঙ্গি তুমি লোক, কেউ কেউ বলবে যে তো হতেও পারে, সব শিলা যত শিলা হয়তো গোবর্ধন শালগ্রামই হতে পারে, সব শিলাকে নিয়ে এসে পূজন এরকমই হতে অনুভূতি নাই। এই জন্য রাগের অভাব আছে এটা হবে না, এই জন্য রাগের প্রয়োজন আছে, উপলব্ধি হয় আমাদের কেন হয় না, আমি ওই অবস্থা পর্যন্ত পৌঁছাই। তারপরে আছে করণের পরে কর্ম, কর্মানে আস্বাদন মাধুর্য আস্বাদন করতে লাগলো। এখন আস্বাদন মধ্যে কাকে আস্বাদন করছে, কৃষ্ণে মাধুর্য, মাধুর্য কৃষ্ণের আছে কৃষ্ণ আছে, যে আস্বাদন করছে ওটি আছে, আর আস্বাদনে কর্মটাই আছে কি আস্বাদন করছে এই তিনটাই আছে, আরাধ্য আরাধনা আরাধক তিনটাই ও সময়তে আছে, অনুরাগ অনুরাগী আর অনুরাগের যে বস্তু বিষয় বিষয় আশ্রয় আর তার মধ্যে ক্রিয়া, এটি হচ্ছে কর্ম। আর যেখানে সে এত প্রেমের উৎকর্ষ একবারে তো হল, যাতে আর আমি প্রেমী ওই প্রেমী এই সব কিছু না থেকে একেবারেতে শুধু অনুরাগ চরম অবস্থা মহাভাব স্বসমৃদ্ধ দশা ওখানে উপস্থিত হয়ে তার চরম অবস্থাতে কোথায় চলে গেল, যেখান পর্যন্ত শেষ ওর চাও দাস সাহেবের কি সেখানে, এগুলি বুঝবার জন্য প্রচুর অনুশীলন থাকা চাই আর প্রচুর সাধু সংজ্ঞা থাকা চাই। এই হচ্ছে জীবনের মূল জিনিস। এইটাকে বাদ দিয়ে যত এদিকে দিকে লাপালাপি করি, ভক্তি মধ্যে প্রবেশ হওয়া ভারী করে। এই জন্য বিদ্যার মধ্যে কোনটা বিদ্যা সব থেকে শ্রেষ্ঠ হল? ভক্তি। ভক্তি মধ্যে আবার কোন ভক্তি হল? স্বরূপ সিদ্ধা ভক্তি। স্বরূপ সিদ্ধার মধ্যে আবার কোন ভক্তি? অন্নাভিলাষী তা রহি, জ্ঞান কর্ম রহি, একেবারে বিশুদ্ধ কৃষ্ণের অনুশীলন। ওটা হচ্ছে চার প্রকারের। চার প্রকারের মধ্যে একটি দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য আর তারপরে মরু। এটা হচ্ছে সাধারণ বৈধি ভক্তিগত একটি। একটা হচ্ছে লোভময় ভক্তি, যাকে বলে রাগানুগা। রাগানুগা বালা ভক্তিটা শ্রেষ্ঠ এই পাঁচ রকম। এইরকম সাধন করতে 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 সিদ্ধ অবস্থা দিয়ে হবে, তখন চারটি রস থাকে। ওর মধ্যে দাস্য অপেক্ষা সক্ষ, সক্ষর অপেক্ষা বাৎসল্য, বাৎসল্য অপেক্ষা এই মধুর ভাব যাহাদের মধ্যে আসবে, তারা কৃষ্ণের মাধুর্য অনুরাগ পূর্বক সব পূজা সাধন করে। এই হচ্ছে সর্বোত্তম বিদ্যা। চৈতন্য মহাপ্রভু এই বিদ্যা দেবার জন্য এসেছে। এই জন্য চেতো দর্পণ মার্জনম ভব মহাদাবা নির্বাপনম শ্রেয়কার অবচন্দ্রিকা বিতরণম বিদ্যাবধু জীবনম। এই বিদ্যার লাভ কিসে করতে পারবো আমরা? ওই বিদ্যাবধুর জীবন স্বরূপ হচ্ছেন নাম। এই নাম রূপী চন্দ্র থেকে এই কিরণ প্রস্ফুটিত হলে এই ভক্তি দেবী আর তারপরে ওই অনুরাগের দ্বারা কৃষ্ণের মাধুর্য ইত্যাদি আমরা আর পাবো। এই জন্য বিদ্যা হচ্ছে কৃষ্ণকে জানা। আর ওই সমস্ত বিদ্যার মধ্যে এই ব্রজের যে বিদ্যা আর তার মধ্যেও এই রসের বিদ্যা সর্বোত্তম হচ্ছে গোপী ভাব রূপী বিদ্যা সবচেয়ে বেশি। এটি নাম রূপী চন্দ্র। এই নাম রূপী চন্দ্র পাওয়া যাবেন কিরকম ভাবেতে? বিনা সদগুরু আশ্রয় করলে কি বৈষ্ণবগণের আশ্রয় না করা পর্যন্ত, আর হরিকথান যদি না শ্রবণ করা যায় তাহলে হবে না। এই জন্য আদৌ শ্রবণম তারপরে কীর্তন, যত পরিমাণে তার অনুশ্রেণীয়াত অর্থ অনুশ্রেণীয়া। প্রথমে শ্রবণ করবে, নিরন্তর শ্রবণ করবে, আনুগত্যে সে শ্রবণ করবে নাম মহিমা ইত্যাদি, আর তারপরে কি করবে? অর্থ বর্ণয়াত মানে কীর্তন করবে। তারপরে হৃদরোগ যে আছে সেটি প্রথমে আসবে এখানে ভক্তি, আর ভক্তি দ্বারা কাম ইত্যাদি সব পরে দিবে। এই হচ্ছে এই নামকে পাওয়া। এই নামটা হচ্ছে জগতেতে কলিকালেতে বিশেষ করে এই হচ্ছে যুব ধর্ম এবং সব থেকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম। এই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ বিদ্যা। তারপরে বললেন কৃতির মধ্যে জীবের কোন বড় কীর্তি? আপনারা বাড়িতে ফিরে যাবেন, লোক বলবে যে সে কোথা থেকে আসেন, দ্বারকা মথুরা বৃন্দাবন ইত্যাদি সব তুমি ফিরে ফিরে আসবে। আজকাল সহজ হয়ে গেছে, আমি যখন বাড়িতে ছিলাম ওই 12-13-14 বছর একটু জ্ঞানের স্কুপ হচ্ছে, একটু প্রকাশ হচ্ছে, তখন আমার মাতা পিতা গিয়েছিল গয়াতে মুন্ডন করে আসেছিল। গয়া বেশি দূর ছিল না, পয়দল হেঁটে গিয়েছিল, প্রায় আমাদের গ্রাম থেকে 100-150 মাইল পয়দল হেঁটে গিয়ে আর পয়দল জানা। এসে প্রথমে জাতির মধ্যে কুটুম্বের মধ্যে তাদের মিলিত হতে হবে, কারণ দেশে বিদেশে কোথায় খেয়েছে, কি করেছে, কোন জাতির খেয়েছে, এই জন্য কুটুম্বের সঙ্গে মিলতে গেলে সমস্ত কুটুমগণকে হয়ে গেল নিমন্ত্রণ করা হলো।
সুদর্শন যা
হরে কৃষ্ণ হরে তারা ওখান থেকে মুন্ডন করে এসেছে। তীর্থযাত্রাতে প্রথমে গেলে মুন্ডন করবার বিধি, আমাদের বিধি হচ্ছে যে প্রথমে এখানে সে ভালো মন্দ পুরি হালুয়া কচৌড়ি এখান থেকে খেয়ে আর তারপরে ভুতে যাবো। প্রথমে এই চিন্তা, পূর্বে এইসব চিন্তা থাকতো না। পূর্বের তীর্থযাত্রা কিরকম করবে, মথুরাতে আসলো, প্রথমে বিশ্রাম ঘাটেতে যাবে, ওখানে মুন্ডন করে দিয়ে যাওতি সব আবর্জনা গুলিকে ফেলে দিয়ে স্নান করবে, ঠাকুরকে দর্শন করবে আগ্রহ সহকারে, উৎকণ্ঠা সহকারে। আর দর্শন করে দিয়ে খাবার চিন্তা তখন পর্যন্ত না, দর্শন করবো দুপুর বেলা। দুপুর বেলা কি খাবে, যদি কোন মন্দিরে কিছু অল্প প্রসাদ পাওয়া গেল তো সেই খেয়ে নিল, শুকনো রুটি চানা যা কিছু দিয়ে দিয়ে জীবন ধারণ করে। আমাদের চার ব্যবস্থা, তিন বেলাতে চার রকমের ব্যবস্থা হবে, ভালো মন্দ খা আগে এখান থেকে খেয়ে গড়ে চলবে, তাহলে আর তীর্থযাত্রা আর কি হবে। তো ওরা যখন যে দেখে মুন্ডন চন্দন করা, তারপরে কমসে কম তো এক দেড় হাজার লোকে যত তাহাতে কুটুম্বী সম্বন্ধী সকলকে ডাকল, আর তখন এই কাঁচা রসই হল, আর কাঁচা রসই সকলকে খাওয়াইয়ে প্রসাদ শুরু পেতে হয়ে তারপরে হলো এই যাত্রা তীর্থযাত্রা। অভিনয় থেকে চালিশ পঞ্চাশ পঁয়তাল্লিশ বছর আগে এই সব বিধি তীর্থযাত্রার মধ্যে নিয়ম আছে, ব্রহ্মচর্য পূর্বক থাকবে যতদিন, কোন রকম কুবাসনা যুদ্ধের মধ্যে আসবে, চোরি ভাব আসবে না, তীর্থযাত্রার সময় কোনো অসত্য কথা কেউ বলবে না, ভগবত ভক্তি ছাড়া অন্য কোনো কাম না আসবে না, সৎ ব্যবহার থাকবে পরস্পর, খুব শ্রদ্ধা থাকবে, শ্রদ্ধা এবং উৎকণ্ঠা যে ওখানে দর্শন করব থাকবে, এই যদি হয় তাহলে তো হবে। আর এই যদি ভাবনা না থাকে তাহলে আর তীর্থযাত্রা কেউ বর্তমানে মনের মধ্যে, বিশেষ করে ওখানকার ধানের মাটি, ধানের বস্তু, ধানের সাধু, তারপরে বিশেষ সত্যতা, আর এর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছে সতত্ব, যদি সেই রকমের যোগ্য কোয়ালিফায়ার যদি সমস্ত সাধু পাওয়া যায় তাহলে দর্শনেতে যত লাভ হবে। ঠাকুর কোনো কথা বলবে না, দর্শন করবেন চলে আসবে, মহাত্মা যদি সরকারে কিছু কথা বলবে হৃদয়ে মনগুলো দূর করে দিবে, আর শ্রদ্ধা না থাকলে শ্রদ্ধাটা দিয়ে পাত্র পাত্রে হবে। এই জন্য তীর্থযাত্রাতে গেলে এই সব বিচার করে তীর্থযাত্রা। আজকে এই পর্যন্ত ये कार्तिक महीना वही है जिसमें दीपावली हुई, यह वही महीना है जिसमें कि कृष्ण पहले दिन बछड़े चराने के लिए निकले, और यह वही महीना है जिसमें कि कृष्ण गैया को चराने के लिए निकले, गोचारण किया, वह वही महीना है जिस दिन कंस को यहाँ पर मारा, वो वही दिन है। और भी तरह तरह से ये महीना बहुत पवित्र माना जाता है, विशेष करके राष्ट्र में इसी महीने में हुई थी जो सब प्रसिद्ध है, यह अभी पूर्णिमा आएगी, इसलिए इस महीने को बड़े अच्छी तरह से सावधानी पूर्वक भगवान का नाम कीर्तन करते हुए, भागवत सुनते हुए, संतों के साथ में रहते हुए, मंदिर में रह करके, जमुना के किनारे रह करके ये सब पथ का पालन करना चाहिए। पूछ रहे हैं राय रामानंद जी से, जिसमें हमने कल बतलाया कि जितने प्रकार की विद्याएं हैं सब विद्याओं में भगवान की भक्ति बनी, इसके द्वारा भगवान को हम जान सकते हैं, भगवान के प्रति प्रेमा भक्ति को पा सकते हैं, इससे बढ़कर के और कोई विद्या नहीं है। कीर्ति मध्य जीवर कौन बड़ा कीर्ति, कल ये बतला रहा है, जगत में तरह तरह की कीर्ति है, गांधी जी आए और हम लोगों को भारतवर्ष को स्वतंत्र कराया, इसका बहुत कुछ श्रेय गांधी जी को है। हमारे देश में महाराज हरिश्चंद्र थे, बहुत दान दिया, उनकी बड़ी कीर्ति है, जो दान देता है वो बड़ी कीर्ति है। अभी कोई डॉक्टर हो बिना पैसे का वो इलाज यदि कर देना उसकी बड़ी कीर्ति हो जाए। उस तरह से सब विषय में जाति कीर्ति को लोग समझते हैं, किंतु ये कृतियां जीव के लिए प्रशंसनीय नहीं है, ये कुछ लाभ नहीं दे सके। सबसे बड़ी कृति है यदि कोई भक्त भगवत भक्त हो गया, वैष्णव वैष्णवी हो गया, ये सबसे शास्त्र में बड़ी कृति करते हैं। किसके लिए? जीवात्मा के लिए। ये शरीर तो आज न कल छोड़ देंगे। बड़े विद्वान हैं, एक 28 भाषाओं को जानने वाले थे लखनऊ में, उनकी उम्र करीब करीब 70-75 वर्ष की थी। हम लोग ऐसे बड़े दुखी हैं, वो यूरोप की अमेरिका की 6 भाषाओं को जानते हैं, बड़े टॉप के विद्वान, ऐसी कोई भाषा जो नहीं है विश्व की जो नहीं जानते, और खाने के लिए एक एक ग्रास के लिए मर रहे थे। कोई उनको कविता नहीं पूछता था। लखनऊ में हमसे बैठे बड़ी दुखी होकर के हमसे कहा, तो हमने उनसे कहा आपने तो ये सब देखा, बड़ी बड़ी विद्याएं देखा कब पढ़ा लिखा, और आपका देखिए जीवन का निर्वाह भी नहीं हो रहा है। हम कहते हैं आप भगवान का नाम जैसा मैं कर रहा हूं कर कीजिए, हमारे साथ में चलिए, वृंदावन में नहीं चलिए, आपको खाना पीना रहना बड़ा सुख से सभी कुछ आपकी व्यवस्था कर, किंतु इनका सौभाग्य नहीं कि भगवान का नाम करें। भक्त महाराज जी का देखा इतने बड़े भारी राजा और छोड़ दिया, आज तक भगवान का भजन करने से 3 जन्मों में भी भजन किया और आज तक उनका नाम अजर अमर चल रहा है। इसीलिए प्रहलाद महाराज जी को कौन नहीं जानता, भारतवर्ष में कोई जन्मा हुआ ऐसा कोई बच्चा बच्चा नहीं होगा, स्त्री महिला नहीं है, प्रहलाद महाराज को नहीं जानता। उनका नाम करने से क्या होता है? भाव बंधन कट जाता है, दूर हो जाता है, भगवान के चरण में भक्ति हो जाता है। साधारण मीराबाई को देखो, उनका पद सभी गायन करते हैं, उनको कौन नहीं जानता। उन्होंने जगत के लिए क्या किया? और न छत्र खुला था, भंडार किया था, न भूकंपों की सेवा की थी, न क्या किया था। अभी भूकंप बहुत जोर से आया हुआ है और सब लोग सेवा कर रहे हैं। विदेशी लोग ये चाहते हैं कि हम लोग डायरेक्ट रुपया पैसा देंगे, लाखों लाखों डॉलर, किंतु वो सब जो जिन अफेक्टेड है, जिनको वो भूकंप में पीड़ित है उनको मिले, किंतु गवर्नमेंट चाहती है नहीं ऐसा नहीं होगा, वो हमारे माध्यम में आना चाहिए, जिससे कि 90% हम रख लें और 10% उनको दे दें, ये गवर्नमेंट चाहती है। संस्थाएं भी ऐसी ही हैं, आजकल लाखों संस्थाएं हैं, वो चाहती हमारे माध्यम से आए, उसमें आधा हम ले लें और आधा दें और न दें, सभी अपने अपने ताल में लगे हुए हैं और बड़ा नाम कमाना चाहते हैं। तो ये सब कीर्ति कीर्ति नहीं है। यदि इस विश्व में से माया के जाल में से करोड़ों करोड़ों लोग अरब खरब पड़े हुए हैं, इनमें से एक जीव को भी यदि उसकी चित्त वृत्ति को घुमा करके भगवान के चरणों के करीब में कर दिया, भगवान का भजन करने लगा, इससे बढ़कर के विश्व ब्रह्मांड में कोई उपकार नहीं है। भूकंप में नहीं मरेंगे तो परस्पर लड़ करके मरेंगे, मरेंगे तो जरूर न किसी रूप में जो जन्म है वो मरेगा ही, उन लोगों के साथ में हम लोगों की सहानुभूति है, ये तो ठीक है, किंतु कर क्या सकते हैं। अब एक लड़की है, अभी 2-3 महीने उसका शादी हुआ, वो मर गया उसका पति, क्या कर लिया लोगों ने, उसकी लोग क्या सहायता करते हैं। कितनी लड़कियां तो रोज मर रही हैं विवाह होने के बाद भी, जल करके मर जाती हैं लोगों पतियों के उपद्रव से, सास ससुरों से, क्या करता है समाज, ये सब विचार नहीं करेगा। कन्यादान ये होता ना यहाँ पर, कन्याओं का भोजन होता है ना श्राद्धों में ना किसमें होता है?
नवरात्रों में,
नवदेवियों में लड़कियों को लेकर के भोजन कराते हैं। बड़ी किस लिए क्या करते हैं? बस 5-20-25 जो मिल गई उनको खूब भोजन कराओ। विवाह हुआ तो खूब उसमें दान देकर के उसका विवाह करा, किंतु विवाह के बाद में जब जल मरी तो उसके लिए तूने क्या किया? जे न जल मरे उसके लिए क्या करते हो? इसलिए ये सबसे कोई कल्याण नहीं होगा। वो तो आदमी एक सहानुभूति देखा बाप भाई के लिए कीर्ति के लिए अपना कर देता है, किंतु एक जीव को इस विश्व में से माया के जाल से निकाल करके भगवान के तरफ में उन्मुख कर दिया जाए तो उसका कोटि कोटि जन्म मंगल होता है। इसलिए ये सबसे साय होनी चाहिए यथार्थ रूप में। जो कोई जीव यदि भगवान के तरफ में मुड़ जाएगा, अपने आप धार्मिक हो जाएगा, तो ये सब अन्याय अत्याचार और ये भूकंप उपकंप सब कहां चला जाएगा? राज्य राम राज्य में भूकंप आया था कितनी बार आया था ना? हाँ, एक भूकंप आया था, एक तरह का आया था जो भगवत भक्ति की राम की लहर चली भक्ति की, और उस लहर में भूकंप में सब लोग डूब डूब गए। एक तो ये हुआ था, चैतन्य महाप्रभु आए और कुछ दिनों में विश्व में सर्वत्र ये लहर ला दिया। उन्होंने किसी को शिष्य नहीं बनाया, जिसको देखा कृष्ण कृष्ण बोलो कृष्ण यही की शब्द है, बस वो कृष्ण बोलने लगे। और कान मंत्र में देकर के भी यदि 1000 आदमी को दिया, 1000 आदमी में कोई कृष्ण नाम नहीं करता या 2-1 करते हैं, ये बड़ा है महाप्रभु जी का। सर्वत्र कानों ने दिया कृष्ण बोलो कृष्ण बोलो, हमको भिक्षा दो तो क्या दो, तुम एक बार कृष्ण का नाम, एक बार कृष्ण का नाम करेगा तुम्हारा जगत से उद्धार हो, ये विश्वास रखो सारे विश्व को। आज उनकी कृपा से सर्वत्र पश्चात देशों में आप लोगों के साथ में बैठी हुई 2-4 लड़कियां अमेरिका और इंग्लैंड की बैठी हुई भगवान का नाम करती बड़े पवित्रता से रहती हैं, तिलक लगाती हैं, गले में माला है। आप लोग भी सभी गले में लज्जा करने की कोई जरूरत नहीं है, इससे बढ़कर के पवित्र और कीर्ति का भी ब्रह्मांड में कोई काम नहीं। इस चीज को समझो, इसमें कोई लज्जा नहीं है। लज्जा तो चोरी करने में, लोगों को सताने में ये इसमें लज्जा होनी चाहिए, अपवित्रता रहने में होनी चाहिए, किंतु ऐसे कामों में भगवान का भजन करेंगे और इसमें लज्जा होगी। बहुत से लड़के लड़कियां आजकल गले में माला देकर के स्कूल कॉलेज में नहीं जाते हैं, यहाँ तक के अध्यापक भी उनका तिरस्कार करते हैं, समाज ऐसा हो गया है दूर। इसलिए ये बतला रहे हैं जे कीर्ति में सबसे बड़ी कीर्ति है भगवत भक्ति का। जो भगवत भक्त है, जिनको भक्ति शुद्ध रूप में है, वही सबसे बड़े कीर्तिमान है। इसके लिए बतला रहे हैं, गरुड़ पुराण में बतलाया गया था कि कली काल में भागवत होना, वैष्णव वैष्णवी होना बहुत ही दुर्लभ है, बहुत। अभी तो कुछ दिखा जा रहा है, कुछ दिनों के बाद में सब खत्म हो जाएगा। ब्रह्मा रुद्र इत्यादि ये सभी उस पदवी के लिए लालायित होते हैं। वर्णाश्रम धर्म का बतलाया है यहाँ, ब्रह्मणानं सहस्रेभ्यो,
ब्राह्मणानं
सहस्र सहस्त्र हजारों हजारों यदि ब्राह्मण, ब्रह्म माने ब्राह्मण किसको कहते हैं? जो शुद्ध विचार के हों,
ब्रह्म जाना चाहिए,
केवल जनेऊ धारण करना वाला नहीं, अपने आचार विचार से ब्राह्मण हो। तो ऐसे ऐसे जो पवित्र रहता है, गायत्री उच्चारण करता है, संध्या स्नान करता है, लोगों को वेद इत्यादि का अध्ययन कराता है, अपने करता है, दान देता है, लेता है, केवल लेना ही लेना जानता नहीं है, लेकर के उसे भी अधिक देना जानता है, वो ब्राह्मण। ऐसा नहीं अरे मैं ब्राह्मण हूं मैं नहीं देता, मैं वैष्णव हूं हम लोग किसी को नहीं देते, ऐसा भाव नहीं। तो इस तरह से ब्राह्मणों से, हजार हजार ब्राह्मणों से एक सत्र आदि यज्ञ करने वाला क्षत्रिय आदि, विष्णु के लिए अर्पित करने वाला स्वाहा इत्यादि करने वाला वो ब्राह्मण सबसे हजारों है। और सहस्त्र सहस्त्र हजारों हजारों यज्ञ जो करने वाले ब्राह्मण हैं, उनसे वेदांत को जानने वाला वेदांत पारक, वेदांत पारक माने क्या? वेदांत, वेदांत कहते हैं उपनिषद को। उपनिषद का अंतिम भाग भगवत भक्ति भगवत उपासना, ये जो जानता है वो वेदांत पारक है। भगवान का वेदांत पढ़ करके भी सब भगवान की उपासना नहीं करता, मैं ही भगवान हूं ऐसा कहता है तो वो दंडनीय होता है। लड़का कहे अपनी मैया को, ये कह सकता है कि मैं तुम्हारा स्वामी हूं, दंडनीय होगा। तो हम लोग उनके दास हैं, हम कभी भी ब्रह्म नहीं हो सकते हैं। तो वेदांत पारक वेदांत को जानने वाले वही हैं जो भगवान के दास हैं और इसी का प्रचार करते हैं। ऐसे ऐसे कोटि कोटि वेदांत कोटि वेदांत जानने वाले कोटि कोटि लोगों में विष्णु भक्त एक बहुत से, और ऐसे ऐसे कोटि कोटि वैष्णव में एकांतिक जो भगवत भक्त हैं वो से, और ऐसे कोटि कोटि एकांतिक लोगों में भी कृष्ण के एकांतिक भक्त सबसे से, और ऐसे एकांतिक कृष्ण के भक्तों में भी राधा कृष्ण की जो उपासना करने वाले हैं वो लोग इससे भी अधिक हैं, और ऐसे ऐसे कोटि कोटि राधा कृष्ण की आराधना करने वालों में भी जो ऐश्वर्य भाव से आराधना करते हैं वो लोग ब्रजभाव से उपासना करे थे, ये सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए ये उपासना सबसे श्रेष्ठ है। यदि ऐसा कोई एक वैष्णव हो गया या वैष्णव हो गया, उससे बढ़कर के विश्व ब्रह्मांड में कोई नहीं। ब्रह्मा जी इस जगत में कोई व्यक्ति यदि 100 वर्ष तक वर्णाश्रम धर्म का, 100 जन्म तक वर्णाश्रम धर्म का अच्छी तरह से पालन करे तो ब्रह्मा जी बन जाए। और ब्रह्मा जी 100 जन्मों में आराधना करने पर शिव बनेंगे, और शिव जी कहते हैं कि हम 1000 जन्मों में जाकर के वैष्णव बनेंगे। शंकर जी कहते हैं तो वैष्णव पद कितनी बड़ी है। दुर्वासा जी इतने बड़े लोग और उनकी कृति मलिन हो गई कब, अम्बरीश महाराज जी से जब पल्ला पड़ा, अम्बरीश को दंड देने गए और कहा विष्णु का चक्र ही उनको दंड देने के लिए चला, वो उनके भय से भाग करके काज ने कहा चले गए। इसलिए वैष्णव पदवी जो है ये साधारण जगत के लोग नहीं समझते। शंकर प्रभृति वैष्णव लोग जितने भी, शंकर जी प्रहलाद महाराज जी की बड़ी प्रशंसा करते हैं जो मैं भगवान की सेवा नहीं कर सका तुम उनको अपने वशीभूत कर दिया, इन्हें शंकर जी भेज दिया उनको कुमार को किन के यहाँ, प्रहलाद महाराज जी हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं, हनुमान जी प्रार्थना करते हैं पांडवों से, और पांडव प्रार्थना करते हैं उद्धव से, और उद्धव जी गोपियों की चरण धूलि चाहते हैं। तो बतलाओ तो ये गोपियां जो बैठी हैं कितनी ऊंची हैं, इससे बढ़कर के और जगत में कोई पद ही नहीं है। तद भक्ता नाम अनुबंधी मुक्त, यदि कोई भक्ति करता है तो मुक्ति भी हाथ जोड़ करके उसके पीछे पीछे, मुक्तियां सब उसके पीछे पीछे, यहां तक कि जितनी भी रिद्धियां हैं सिद्धियां हैं यदि हाथ जोड़ करके उसके पीछे चलती है। इसलिए भगवत भक्त से बढ़कर के और कोई प्रतिष्ठा जगत में कोई पद नहीं है। इसलिए आप लोग भक्त को वैष्णव को वैष्णवी को साधारण मत समझें। कुछ लोग नहीं समझते हैं, जैसे मीराबाई को उनके घर वालों ने नहीं समझा ठीक से, उसी तरह से प्रहलाद महाराज जी को उसके बाप ने बहुत विद्वान था किंतु नहीं समझा। इसी से जब भगवान प्रकट हुए और सन्नक से उसके चीज दिया सब लोगों ने समझा, संपत्ति मध्य জীবের কোন সম্পত্তি গণ রাধা কৃষ্ণ প্রেম যা সেই বড় এই জগৎ মে বহু তরহ কি সম্পত্তিয়া হ্যাঁ কৌন সি সম্পত্তি সত্য সে রুপয়া পয়সা ধন জন পুত্র পরিবার জগত মে হমক জেসে হমারে ভোগ হম চাহতে হ্যাঁ বিষয় ভোগ ও জিসে মিল সকে উসকো কহতে হ্যাঁ ধন জেসে কিসি নে কহা যে রুপয়া পয়সা ধন আর কিসি নে বতলা যে বিদ্যা হি সবচেয়ে বড়া ধন কিসি নে বতলা যে হম প্রশংসা সবচেয়ে বড়ি ধন হ্যাঁ লোক লাখো রুপয়া খরচ করকে এক সাংসদ বননে কি চেষ্টা করতে হ্যাঁ কিস লিয়ে প্রতিষ্ঠা হোগি ইসকো ধন মান লেতে হ্যাঁ इसी तरह से पतिव्रताएं स्त्रियां कहती हैं जब पतिव्रता होना ही सबसे संसार में बड़ा धन है संपत्ति उसके लिए क्या नहीं कर देती कोई तपस्या को सबसे बड़ा धन समझता है जैसे कि हमारे वृंदावन में कौन ऋषि तपस्या को सबसे बड़ा धन माना था और है भी कुछ तपस्या पर उसे जो चाहे सो कर सकते किंतु उनकी तपस्या भी भक्तों के आगे देखा इसलिए जितने प्रकार के जड़ भोग के लिए जो धन है जिसको हम रोजगार करके हम लोग उसको उपार्जन करके धन और सुख भोगना चाहते हैं तो धन ही जो है ये तीनों काल में दुखदायी है धन कमाने के समय में कितना दुख है बाल बच्चों को छोड़ करके सब कुछ छोड़ करके दिन रात परिश्रम करके सब कुछ धन संग्रह होता है और यदि वो धन नष्ट हो जाए तो कितना दुख और यदि नष्ट नहीं हुआ भी घर में प्रचुर अर्थ है चोर डकैत यदि जान लिया तो आपको भी मारेंगे जान से और रुपया पैसा भी ले लेंगे ये धन ही तीनों कालों में यदि दुखदायी है तो धन से संग्रह करा जाने वाला स्त्री जैसे विवाह में लाखों रुपया खर्च करके स्त्री आती है पति मिलते हैं आजकल पति की बिक्री होती है तो भी एक व्यवसाय चल रहा है 4 लाख 3 लाख 5 लाख लड़के लोग की कहां लड़कियां कहां से शादी करें तो ये भी एक कारोबार हो गया तो उस रुपये से जब खरीदा जा रहा है ये सब तो यही चीज घर बनाते हैं हमारे अभी कहां जहां भूकंप बनाया भूकंप हुआ वहां पर 4 तल्ला 5 तल्ला 7 तल्ला मकान थे और बड़े आराम से लोग सो रहे थे और जिस दिन यह घटना घटी जिससे 50,000 आदमियों का उसी में कब्र हो गया बनाया था अपने आराम के लिए किंतु हो गया कब क्या हो जाएगा कोई पता नहीं है इसलिए ये सब संपत्ति यही तो करेंगे रुपया उपार्जन करके क्या करेगा एक तो विवाह विवाह करके घर बनाएगा घर बना करके बाल बच्चों का पालन पोषण करेगा उन्हें पढ़ाएगा लिखाएगा बाल बच्चे आपको अंगूठा दिखला देंगे कुछ दिनों के बाद जैसा कि दिखला दे घर बनाया ढह जाएगा जदुपुरी में यहां पर बड़ा भारी विशाल जदुपुरी में मथुरा में इन लोगों का राजभवन था सर और अयोध्या में भी बड़ा भारी राजमहल था वो राजमहल कहां गया कोई पता नहीं तो यही तो करे वो धन कमा करके ना क्या करोगे वो तो दो दिन नहीं चुटकी बजाते न जाने कहां चला जाएगा इसलिए भक्ति धन क्यों नहीं संग्रह करते जो जन्म जन्मांतर में कभी भी क्षय नहीं होगा तुमको सुख शांति बनाएगा कृष्ण को भी क्षय से ले आएगा ऐसा ये सब उपार्जन करने की चेष्टा करो किम अलब्ध भगवती प्रसन्न सीने के तेने तथापि तत्परो राजन नहीं बांछन्ति किंचन यदि हरि प्रसन्न हो जाए उनका भजन किया जाए और ये भक्ति धन किसी को है तो क्या बाकी रह जाता है संसार में विश्व में गोलोक वैकुंठ ब्रज में मिलना क्या बाकी रह गया क्या बाकी रहा यदि प्रभु प्रसन्न हो गए ऐसे धन को छोड़ करके जो लोग विषय के लिए चेष्टा करते हैं वो बड़े दुर्भागा हैं एक समय हमसे या हमारे गुरु जी से शायद किसी ने पूछा कहा ये आप लोग बड़े बैरागी हैं तो गुरु जी ने इसका सहज उत्तर दिया हम लोग बैरागी नहीं है, आप लोग बड़े बैरागी, क्योंकि हम लोग तो सबसे बड़े कामी हैं। हम संसार का यह सब वैभव छोड़ करके सबसे जो श्रेष्ठ वस्तु है कृष्ण के लिए हम लोग वैराग्य करते हैं। हमारा वैराग्य देखावटी एक तरह से है, हम इन चीजों को ग्रहण नहीं करते, किस लिए? प्रभु को पाने के लिए छोड़ दिया इसे। और आप लोग ऐसे प्रभु को भी छोड़ करके ये संसार की छुट्टी कौड़ी के लिए अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, इसलिए वैरागी तो आप लोग हैं। असल चीज को आप लोगों ने छोड़ दिया, उसे वैरागी हो। इसलिए भक्ति ही एकमात्र धन है। तथापि सत्परो राजन, यदि किसी को भक्ति हो गई तो विश्व ब्रह्मांड की कोई भी चीज की वो लोग इच्छा नहीं रखते। इसलिए संपत्ति में यदि राधा कृष्ण का प्रेम हो गया तो बाकी सब प्रकार की संपत्ति मिल जाती है। दुख मध्य कौन दुख है गुरु पर, कृष्ण भक्त बिना दुख नहीं देखी पर। उन महाप्रभु जी ने पूछा, ये संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है? महाप्रभु जी राय रामानंद जी ने कहा, इस संसार में बहुत प्रकार के दुख हैं। मरना जीना हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस बहुत से हैं, किंतु परमार्थिक एक भी सत्य नहीं है। असल दुख तो यह है इस जगत में, मरना और ये सब नहीं, धन नष्ट होना दुख नहीं है। वैष्णवों का संग यदि छूट जाए तो ये सबसे बड़ा, वैष्णवों से विरह होना यही सबसे बड़ा मान है। इससे और क्यों, हम भगवान को पाने के लिए अग्रसर हो रहे थे, और सागर भी वो पार करा दे, अब संग उनका छूट गया, मैं बेसहारा हो गया। सबसे बड़ा वही असहाय और दुखी है जो भगवत भक्त का संग नहीं करता। इसलिए भगवत भक्तों का विरह संसार के लिए और हमारे लिए बड़ा भारी, इससे बढ़कर का और दुखदायी नहीं। मान लिया कि जैसे वो तो मरना है, पति भी मर जाते हैं, पत्नियां भी मर जाती हैं, भाई बंधु और जो पालन पोषण करने वाला है, राजा के राष्ट्रपति भी मर जाते हैं, बड़े बड़े लोग सब मर जाते हैं, किंतु यदि वैष्णव का संग हो जाए ना तो भक्त सागर को पार करा देगा अनायास ही, और कृष्ण की भक्ति भी अनायास ही हो जाएगी। यही सबसे बड़ी संपत्ति है और इससे बढ़ करके और कोई विरह नहीं है भक्तों के संग छोड़े देगा। इसलिए भक्तों का संग छूटना ही ये सबसे हमारे लिए है। आज यही तक रहे वंशा कल चतुर्दशा। Thank you.
আমাদের অনুষ্ঠান